समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
Hello, hello, friends. Today is a very big day for cricket fans as our senior men's team, as they will lock horns with their on-field rivals Australia in Dubai this afternoon. Skipper Rohit Sharma exuded confidence ahead of crucial semi-final clash of ICC Champions Trophy 2025, emphasizing process over revenge despite their previous defeat to the same opposition in the 2023 World Cup final. So lots to watch out for, lots of action. And Alka, very good morning to you.
बिल्कुल सुभद्रा, और आज का दिन बड़ा रोमांचक होने वाला है। सुप्रभात, आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल भी होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के संक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामाचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
गुड मॉर्निंग अलका। सो वी बिगिन विद सम न्यूज हेडलाइंस देन।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट उपरांत आज तीन वेबिनार में भाग लेंगे। ये वेबिनार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को विकास, विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में प्रमुखता देने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ वेबिनार परमाणु ऊर्जा मिशन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए सुधारों के इंजन के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। वेबिनार सरकारी अधिकारियों, अग्रणी उद्यमियों और व्यापार विशेषज्ञों को भारत की औद्योगिक, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेगा। इस वेबिनार में नीति कार्यान्वयन, निवेश सुविधा और प्रौद्योगिकी अपनाने पर केंद्रित होगी, जिससे बजट के परिवर्तनकारी उपायों का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और विषय वस्तु विशेषज्ञ भी वेबिनार में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप ओपन फोरम पर और अधिक प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि नमो ऐप पर साझा की गई प्रेरक यात्राओं में से कुछ महिलाओं को 8 मार्च को महिला दिवस पर प्रधानमंत्री के डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट्स का संचालन करने के लिए चुना जाएगा। सुभद्रा, ये बहुत ही अच्छी बात है।
yes,
और बिल्कुल, महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं और किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और 8 मार्च का दिन जो होता है, वैसे तो हर दिन उनका अपना होता है, लेकिन 8 मार्च का दिन उनका विशेष रूप से अपना होता है।
Union Minister Dr. Jitendra Singh has said that the country's research and development spending has doubled in the last decade from more than 60,000 crore in 2013-14 to 1.27 lakh crore rupees. Speaking at the Disha program event in New Delhi yesterday, Dr. Singh said the Disha program will propel the country's knowledge economy and strengthen Atmanirbhar Bharat. Dr. Singh asserted that homegrown innovations in artificial intelligence, biotechnology and quantum computing will shape the country's economic future.
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर जाएंगे। डॉ जयशंकर ब्रिटेन में अपने समकक्ष विदेश सचिव डेविड लेमी के साथ चर्चा के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध सुदृढ़ हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर आयरलैंड की 2 दिन प्रवास के दौरान अपने समकक्ष साइमन हैरिस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री वहां भारत वंशियों से भी बातचीत करेंगे। भारत और आयरलैंड के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं।
President Donald Trump has confirmed the tariffs on Canadian and Mexican products will be implemented as planned. He told reporters at the White House yesterday that 25% tariffs on Canada and Mexico will start today. Trump also stated that there was no room left for Mexico or Canada regarding trade negotiations.
No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect. Vast amounts of fentanyl have poured into our country from Mexico. And as you know, also from China, where it goes to Mexico and goes to Canada. And China also had an additional 10. So it's 10 plus 10.
Stock markets in the U.S. fell after the announcement. The tariffs had been a possibility for months, but are now officially starting today. In addition, another 10% tax on goods from China is also expected to begin soon. This means the U.S. is increasing trade costs for its three biggest trading partners. All three countries have already said that they will retaliate against the U.S. in response to the tariffs, raising the prospect of a widening trade war.
मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा या बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है. जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में आज आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा और बिजली चमकने के आसार हैं. मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि रविवार को इस क्षेत्र में नए पश्चिमी विक्षोभ की आशंका है. कोंकण और गोवा में बृहस्पतिवार तक तथा तटीय कर्नाटक में शुक्रवार तक उमस भरी गर्मी बनी रहेगी.
India strongly rejected comments made by UN Human Rights Chief Volker Turk in his global update at the Human Rights Council in Geneva. Speaking at the UN, India's permanent representative to the UN in Geneva, Mr. Arindam Bakshi, called the remarks unfounded and baseless, saying they did not reflect the reality on the ground. Bakshi emphasized that India is the world's largest democracy with a vibrant and diverse society. He criticized Turk's reference to Kashmir and Manipur and using Kashmir instead of Jammu and Kashmir. Mr. Bakshi highlighted Jammu and Kashmir's high voter turnout, booming tourism and rapid development.
The world's largest democracy continues to be a healthy, vibrant and pluralistic society. Unfounded and baseless comments in the update contrast jarringly with ground realities. Nothing illustrates this divergence more than the passing reference to Jammu and Kashmir, erroneously referred to as Kashmir, ironically, in a year that stood out for that region's improving peace and inclusive progress, be it the large turnout provincial elections, the booming tourism or the rapid development pace.
India also expressed concern over the UN report's oversimplifications and cherry-picking of issues. Mr. Bakshi urged the UN Rights Office to take a long and hard look in the mirror. Turk's update covered various global conflicts, including Ukraine and Gaza, but did not mention Pakistan. Moving on to the world of sports now, India and Australia will clash in the first semi-final of ICC Champions Trophy 2025 in Dubai this afternoon. The match is scheduled to begin at 2:30 p.m. IST. Here's more in this report.
The Indian bowling has been a strong point for India so far in the tournament as the spinners have been able to justify their selection in the squad. After convincing wins against Bangladesh and Pakistan, New Zealand proved to be a good test for India in the end. India topped Group A after winning all three of their group stage matches. On the other hand, Australia have shown that their inexperienced side can set up as there have been some great performances. The likes of Josh Inglis, Alex Carey and Adam Zampa have continued their fine form as Steve Smith. Smith's captaincy has got them into one of the semi-finals of a major tournament. The final will be held on Sunday with Mayur Jain, Chiragja, Sports Desk.
News Magazine Program आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का. पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं सुभद्रा.
Thank you, Alka. Starting news from Chennai, the NCC cadets of Puducherry NCC group were felicitated by the Lieutenant Governor of Puducherry, K.K. Lasanathan. A total of 49 cadets from the NCC group Puducherry as part of a larger contingent of the NCC Directorate Tamil Nadu, Puducherry as part of a NCC Directorate. They include the prestigious Republic Day Parade Camp, All India Vayu Sainik Camp, All India Thal Sainik Camp, All India Nau Sainik Camp, South Zone Shooting Championship, National Shooting Championship and the NCC Inter-Directorate Sports Shooting Competitions in which they earn several laurels. Getting to Bengaluru now, the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, and the Psychotherapy Advanced Resource Center are collaborating to organize the 10th World Congress of Women's Mental Health in Bengaluru from tomorrow till 8th of March. This is said to be the first such international conference in South Asia, supported by the International Association for Women and Mental Health. The four-day program includes over 90 talks and discussions by key speakers such as Professor Norman Sartorius, former director of the Division of Mental Health of WHO, and Dr. Jody Pawlowski, a neuroscientist, therapist, and the author of the popular book Mommy Brain, the president of the Royal College of Psychiatrists, United Kingdom, Dr. Shibalade Smith, will also speak on ensuring equity in women's mental health. Over 800 delegates from across the world will experience in women's mental health research, public health and policy making would be participating in the conference. The global experts from the field of psychiatry, psychology, sociology, medicine, human rights, women mental health, neuroscience, public health and legal justice have consented to be part of the conference. Moving to Hyderabad now, in Telangana, BJP and Progressive Recognized Teachers Union, PRTU, each bagged one out of the two teachers' MLC seats. The counting for the lone graduates' constituency is still underway. Malka Komaraya of the BJP emerged victorious in the Medak Nizamabad Karimnagar Adilabad Teachers' MLC election. He secured 12,959 votes, surpassing the winning quota of 12,073 votes. PRTU candidate P. Sripal Reddy won the Nalgonda Warangal Khammam teacher seat after 18 rounds of elimination. He secured 13,969 votes, while the winning quota is over 11,821. He defeated the sitting MLC A. Narsi Reddy of the United Teachers Federation. The BJP contested all three seats and Congress was in the contest in the lone graduate seat, while the BRS party had opted out of the contest. The counting of votes is underway for Medak Nizamabad Karimnagar Adilabad graduates constituency. The authorities found over 8,000 votes invalid out of over 2,50,000 polled votes. And Alka, over to you now for rest of the news.
बिल्कुल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च तक चलेगा. सरकार महीने के अंत में 2025-26 का बजट पेश करेगी. ये जानकारी नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया. उन्होंने लोगों को बजट 2025 के लिए अपने सुझाव भेजने के लिए एक फोन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है. उन्होंने कहा कि 5 मार्च को सभी महिला संगठनों को संवाद के लिए विधानसभा में आमंत्रित किया गया है ताकि वे बजट पर अपने सुझाव दे सकें. साथ ही बजट पर लोगों से सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में महिलाओं को वित्तीय मदद, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण पर अंकुश लगाना, रोजगार, बुजुर्गों के लिए सहायता और यमुना नदी की सफाई जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे. दिल्ली यातायात पुलिस इस शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है, जिसमें 1,80,000 लंबित नोटिस और चालानों का निपटारा किया जाएगा. ये आयोजन राजधानी की 7 जिला अदालतों में होगा. दिल्ली यातायात पुलिस की ये विशेष लोक अदालत रोहिणी, साकेत, करकडुमा, पटियाला हाउस, द्वारका, तीस हजारी और राउज एवेन्यू कोर्ट में आयोजित होगी. इसका आयोजन दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से किया जा रहा है. इस लोक अदालत में केवल भुगतान योग्य चालानों का निपटारा किया जाएगा, जो दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट पर 30 नवंबर 2024 तक लंबित थे. प्रत्येक लोक अदालत बेंच में 1,000 चालान और नोटिस लिए जाएंगे. चालान और नोटिस की पर्ची दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है. आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण को हटा दिया है. ग्रैप संबंधी उप समिति ने कल अपनी बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया. समिति ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफी सुधार हुआ है, जिसका कारण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप एक हटा दिया गया है. समिति ने कहा कि कल दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज किया गया. वहीं सुभद्रा, आज एक बहुत अच्छी बात यह है कि नई दिल्ली में भारत मंडपम में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2025 शुरू हो रहा है और 4 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान करेंगे. भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित आहार मेले का ये 39वां संस्करण है, जो भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है. इस आयोजन में दुनिया भर के 1,700 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे, जिनमें 80 से अधिक विदेशी प्रदर्शक शामिल होंगे जो 17 देशों से आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर रेलवे की महिला कर्मचारियों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रहा है। राजधानी में कल से उत्तर रेलवे मुख्यालय बड़ौदा हाउस में महिला स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा और प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी सुजीत मिश्रा उपस्थित रहे। इस स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं की सामान्य स्वास्थ्य जांच, रक्तचाप, मधुमेह और अन्य कार्यस्थल से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच की गई। इस पहल से 150 से अधिक महिला कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। सुभद्रा, ये बहुत अच्छी जगह है कि अगर कार्य स्थल पर इस तरह की सुविधा मिलती है महिलाओं को तो अच्छा भी रहता है और आप भी अपने मेडिकल जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं उससे भी आप अपडेट रहते हैं। बात कर लें मुंबई की, तो महाराष्ट्र सरकार ने कल राज्य विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन 6,480 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश की। वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पूरक मांगे पेश की, जिनमें ग्रामीण विकास विभाग के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। उद्योग, बिजली और श्रम विभागों के लिए 1,680 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। शहरी विकास विभाग के लिए 590 करोड़ रुपए और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 412 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। वहीं मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए एक वैश्विक नेटवर्क वी कनेक्ट इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समारोह कल महिला दिवस समारोह के हिस्से के रूप में मुंबई में आयोजित किया गया था। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत WTC मुंबई स्थानीय महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने में सहायता करने के लिए वी कनेक्ट के उपकरणों और सेवाओं का लाभ उठाएगा। और इस बीच WTC मुंबई की कार्यकारी निदेशक सुश्री रूपा नाइक ने बताया कि भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कराना है। इस कार्यक्रम में महिला उद्यमियों, काउंसिलर कोर, महिला कलाकारों, वित्तीय संस्थानों और शिक्षाविदों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। और बात कर लें कोलकाता की, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले महीने बंगाली नववर्ष के दिन कोलकाता के कालीघाट मंदिर में स्काई वॉक का उद्घाटन करेंगे। इस साल नववर्ष 14 अप्रैल को है। इस स्काई वॉक से यात्रियों को कालीघाट मंदिर में प्रवेश करने में आसानी होगी। आज सवेरे आप सुन रहे हैं अलका और सुभद्रा के साथ, और अब समय है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात कर लें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। दिल्ली की बात करें तो दिन के समय तेज सतही हवाएं चलेंगी। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जॉय सिटी कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बाकी का हाल आप बताएं सुभद्रा।
यस अलका, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू मिस, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 25 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35। बेंगलुरु इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पार्टली क्लाउडी स्काई विद मिस्ट, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 34। Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
बिल्कुल, और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास पन्ना
है। यस एंड अलका, बिफोर वी गेट देयर, टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। टुडे इज वर्ल्ड ओबेसिटी डे। यस, द डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट obesity as a global health issue and also to promote practical solutions to end this crisis. So this year 2025 World Obesity Day theme is changing systems, healthier lives. So of course Alka, the day was earlier observed on 11th October, but since 2020 the new World Obesity Day has been changed to 4th of March. So how do we go about celebrating this important day, which is so crucial for a healthy, disease free existence? Of course, pick the right diet, enriched with fruits and vegetables, lots of protein, but leave carbohydrates aside and maintain a healthy weight with a regular exercise routine. Stay active, keep your mind and body absolutely fit with some yoga, some Pilates and various other forms of fitness routine. Also, recently, Prime Minister Modi had talked about this issue. Let's have a listen.
अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना।
बिल्कुल, और जब दिवस की बात चल रही तो आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है जो प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे एक महत्वपूर्ण अवसर है जो सुरक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को याद दिलाता है और उपायों की जागरूकता पैदा करता है। इसी दिन से एक सप्ताह तक चलने वाला सुरक्षा अभियान भी शुरू हो जाता है। कार्यस्थलों पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव 1972 में शुरू किया गया था। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह में बदल दिया गया जो एक सप्ताह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 को हुई थी। ये परिषद राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलन को विकसित करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई थी। और वहीं पे आज भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक बोट INS विक्रांत को 22 सितंबर 1945 को हरक्यूलस के नाम से लॉन्च किया गया था। हालांकि इसका निर्माण रुक गया था और 1957 में भारत द्वारा ब्रिटेन से खरीदे जाने पर यह पूरा हुआ। 4 मार्च 1961 को इसे अपने पहले अवतार में विक्रांत के रूप में कमीशन किया गया। इसकी कमान कैप्टन प्रीतम सिंह महेंद्रू के हाथ में थी। 5 मार्च 1961 को विक्रांत समुद्री परीक्षणों के लिए बेलफास्ट के पोर्टस्माउथ और पोर्टलैंड के लिए रवाना हुआ और 6 अक्टूबर 1961 को विक्रांत आखिरकार भारत के लिए रवाना हुआ। 3 नवंबर 1961 को वो बॉम्बे पहुंचा। INS विक्रांत को भारतीय उच्चायुक्त विजया लक्ष्मी पंडित ने कमीशन किया था। ये पोत लंबे समय तक सेवा देने के बाद नौसेना से रिटायर हो चुका है।
Okay, now getting back to some history. 1840, the world's first commercial photography studio was opened in New York City by John Johnson and Alexander S. Wolcott. And 1951, the first Asian Games started in New Delhi. About 500 athletes participated in the program in 57 different events. The Games was the successor of the Far Eastern Games and the revival of the Western Asiatic Games. And also 1955 this day, the first radio facsimile or fax transmission was sent across the continent. It was invented by Scottish mechanic inventor Alexander Bain. And 1974 this day, friends, Swedish pop sensation ABBA released Waterloo, the first single from their second album and the first single to be credited to the group performing under the name ABBA. It later became the winning entry for Sweden in the 1974 Eurovision Song Contest and number one hit in several countries.
बिल्कुल, और 1998 की बात करें तो भारत के प्रकाश शाह संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बगदाद में विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। 2002 में राष्ट्रमंडल में जिनेवा के खिलाफ प्रस्तावना मंजूर। 2002 में अफगानिस्तान में भूस्खलन में 150 लोग मारे गए और 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लागू की। वहीं 2009 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमुख ब्याज दरों में 0.5% की कटौती की घोषणा की।
एंड मूविंग टू सम इम्पोर्टेंट बर्थ्स एंड डेथ्स, Antonio Lucio Vivaldi, the legendary Italian classical composer, was born this day in 1678. He was one of the greatest Baroque composers that Italy had ever produced. This famed violinist, priest and teacher is often identified with his highly popular The Four Seasons concertos played on the violin. And of course, he's composed some sacred music pieces, also psalms, hymns and motets. Now going back to his Four Seasons, it has 4 concertos, winter, spring, summer, autumn. And now spring, that's what you're listening to right now, is written in key of E major.
और सुभद्रा, आज हम याद कर रहे हैं क्रांतिकारी लाला हरदयाल जी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। विदेशों में भटकते हुए अनेक कष्ट सहकर लाला हरदयाल जी ने देशभक्तों को भारत की आजादी के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। लाला हरदयाल ने दिल्ली और लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त की। देशभक्ति की भावना उनके अंदर छात्र जीवन से ही भरी थी और मास्टर अमीरचंद, भाई बालमुकुंद आदि के साथ उन्होंने दिल्ली में भी युवकों के एक दल का गठन किया था। लाहौर में उनके दल में लाला लाजपत राय जैसे युवक शामिल थे। एमए की परीक्षा में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करने के बाद उन्हें पंजाब सरकार की छात्रवृत्ति मिली और वे अध्ययन के लिए लंदन चले गए। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर लाला हरदयाल ने भारत में सशस्त्र क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए। जून 1915 में जर्मनी से 2 जहाजों में भरकर बंदूकें बंगाल भेजी गई, परंतु मुखबिरों के सूचना पर दोनों जहाज जब्त कर लिए गए। हरदयाल ने भारत का पक्ष प्रचार करने के लिए स्विट्जरलैंड तुर्की आदि देशों में भी यात्राएं की और जर्मनी में उन्हें कुछ समय तक नजरबंद कर लिया गया था। वहां से वे स्वीडन चले गए जहां उन्होंने अपने जीवन के 15 वर्ष बिताए और आज ही के दिन 4 मार्च 1939 को लाला हरदयाल पंचतत्व में विलीन हो गए।
Tributes to Miriam Makeba, who was a famous South African musician, actor and keen civil rights activist, who was named United Nations Goodwill Ambassador, also known by her nickname Mama Africa. She took African traditional music sounds to the world stage and performed in many countries around the globe. She was born this day in 1932. And this is for all you folks who follow alternative medicine route for your ailments. Founder of Hamdard Laboratories, Hakim Hafiz Abdul Majid, was born this day in 1883. He started his medical dispensary in one of the by-lanes of Old Delhi under the name of Hamdard Dawakhana for Unani medicines. Of course, he was the famous student of Hakim Ajmal Khan, who is considered to be the father of Unani medicine. Abdul Majid came from a family of herbal doctors and joined Hakim Ajmal Khan's herbal pharmacy to work towards promoting herbal medicines, to provide that healing touch without bringing on the side effects of modern drugs.
बिल्कुल, और आज ही पुण्यतिथि है वैज्ञानिक अजीत राम वर्मा की। अजीत राम वर्मा सोसाइटी फॉर साइंटिफिक वैल्यूज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने विज्ञान की खोज में अखंडता, निष्पक्षता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देने के लिए एक स्वैच्छिक निकाय की स्थापना की, और इन्हें भारत सरकार द्वारा विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सन 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
And the birthday of Jason Newsted, American bassist with heavy metal band Metallica. He joined Metallica in 1986 after Cliff Burton's death. Newsted remains a member until 2001. Of course, before Metallica, he was a member of Flotsam and Jetsam. And then with several other bands, Newsted turned 62 years of age today. One of the most popular singer-songwriter of guitarists of the mid-80s, Chris Rea, celebrates his birthday today. During the time, Britain was in the grip of punk and new wave. Hence, Rea's fans and followers were in Germany and other parts of Europe. His gruffy, bluesy singing and rock guitar solo became popular when his songs hit the American market. This hard-working musician is also a cancer survivor, and throughout his career, he has been involved in various charitable endeavors, often using music to support causes close to his heart. A snatch of one of his hits, Looking for the Summer.
Look deep into the April face. Change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze.
मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वो देश कौन सा है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वो देश कौन सा है, जिसमें दधीची दानी हरिश्चंद्र कर्ण से थे, सब लोग का हितेशी वो देश कौन सा है, 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवा दूजा वो देश कौन सा है। आज इन्हीं पंक्तियों के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी की जयंती है, और ये सुप्रसिद्ध छायावादी कवि हैं, गद्यकार रत्नेश तिवारी, राम नरेश त्रिपाठी को, जिन्हें ग्राम गीतों के संकलन के लिए याद किया जाता है। और आज ही हम याद कर रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रबल उपस्थिति रखने वाले उपन्यासकार कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु को, जिनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। और आज ही जन्मदिन है रोहन बोपन्ना का भी, उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
यस ऑफ कोर्स, ही टुक बर्थ दिस डे। यस,
बिल्कुल, और सुभद्रा घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से अनुमति लें, तो अलका सिंह और सुभद्रा रामाचंद्रन को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।